मनुष्य के अंदर जो अहंकार है, मूल अहंकार तो करने का अहंकार है। मैं कुछ कर सकता हूं और करता हूं रिजल्ट प्राप्ति के लिए, करने का फल चाहिए मुझे। करने करता क्यों हूं? क्योंकि कोई ना कोई मेरी इच्छा होती है। इच्छा संसार के भोगों की भी हो सकती है, व्यक्तियों के बारे में भी हो सकती है। मान लिया यही इच्छा है कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ऐब नहीं आना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में उठा करती हैं। कोई भी इच्छा उठेगी स्वाभाविक है, उसके लिए आप कर्म करोगे। जब कर्म करते हो तो उसके फल प्राप्ति में या उसका जो फल है उसकी तरफ आपकी निगाह लगी रहती है, क्योंकि फल के लिए ही कर्म कर रहे हो। और फल में हम सब जानते हैं कि बेचैनी होती है। बेचैनी इसलिए होती है कि पूरी मेहनत करने के पश्चात भी मनुष्य को ये पता नहीं होता कि इसका परिणाम वही निकलेगा जो मैं चाहता हूँ। निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। और परिणाम यदि निकल भी जाए मन अनुकूल, तो बाद में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, क्योंकि सारा का सारा संसार परिवर्तनशील है, मैं मेरी देह के। तो इसीलिए जो फल है वो भी स्थायी नहीं रहता, वो भी बदल जाता है। इसी को महाजी कह रहे हैं कि हर सुख दुख में बदल जाता है। या आपकी इच्छा में ही परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए ये ऐसी पहेली है जो मनुष्य की कभी भी सॉल्व नहीं होती। हजारों प्रकार की इच्छाएं हैं। आपके अंदर इच्छा नहीं भी उठ रही है तो दूसरे को देख के इच्छा उठ जाएगी, उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए अनंत इच्छाएं हैं, अनंत उनके लिए कर्म है और अनंत उन कर्मों के फल हैं। और जैसे जैसे मनुष्य की आयु बदलती है, जैसे जैसे उसका समाज बदलता है, जैसे जैसे उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, इन इच्छाओं में, कर्मों में, कर्मफल में समय परिवर्तन हमेशा होता रहता है। अब बच्चे की इच्छाएं कुछ और तरह की होती हैं, किशोर की इच्छाएं कुछ और तरीके की होती हैं, और जो यूथ एज है उसमें इच्छाएं कुछ और तरह की होती हैं, बुढ़ापा आता है तो उसमें कुछ और तरह की इच्छाएं होती हैं, और तरह की अपेक्षाएं होती हैं। तो जैसे जैसे आपकी आयु बदलती है ये इच्छाओं में परिवर्तन सारी जिंदगी आता रहता है। और बस इच्छाओं का जो फल है उसका असंतोष तो खत्म होता नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है। तो सत्पुरुष कहते हैं कि इस संसारी लक्ष्य के मुकाबले में यदि मनुष्य को ईश्वर का पता हो या ईश्वर के विज्ञान का पता हो और उस ईश्वर की तरफ चलने की कोशिश करे सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार, तब ये इस इच्छा चक्र से मुक्ति पा सकता है। और इच्छा चक्र से मुक्ति पाने का मतलब है कर्तापन से मुक्ति पा सकता है या अहंकार से मुक्ति पा सकता है। क्योंकि वाणी कह रही है कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सार। ये जीव का अज्ञान है। ये जीव के पास एक ऐसी शक्ति मौजूद है, उसके संग ही है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जो इस देह के अंदर ही मौजूद है और जीव यदि कोशिश करे तो उसको जान सकता है। और जब उसको ये जानता है या जिन्होंने उसको जाना है उनके अंदर कर्तापन या मूल अहंकार ही खत्म हो जाता है, इसलिए उनकी वासना भी खत्म हो जाती है, डिजायर्स भी खत्म हो जाती हैं। अब जिसके अंदर कोई वासना या डिजायर ही ना हो तो विचार करके देखो उसके अंदर क्या कर्म करने की इच्छा पैदा होगी, किस लिए कर्म करेगा वो? मनुष्य हर वक्त अपने अंदर कमी महसूस करता है। सुबह सोके उठेगा एकदम से अंदर को ख्याल आएगा आज ये करना है, आज ये हो जाना चाहिए, मतलब कि पूरी जिंदगी उसकी कमी में ही खड़ी हुई है। और ये अंदर से जो एक मन में हम कमी का एहसास अनुभव करते हैं यही डिजायर के रूप में बाहर आता है, और ये कमी का एहसास कभी भी आपके अंदर खत्म नहीं हो सकता, किसी जीव के अंदर नहीं हो सकता, चाहे वो पशु योनि में है चाहे वो पक्षी की योनि में है, ये कमी का एहसास उसके अंदर हमेशा हमेशा बना रहता है। तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए वो जिसका जन्म विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के रूप में होता है मनुष्य पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, और उसके अंदर ये पहले से ही भावना होती है कर्म करूंगा तो अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा। तो अब बताइए ऐसी हालत में आपके अंदर कर्तापन कैसे खत्म हो सकता है? खत्म हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए दो चीज के बंधन में है आप, कर्तापन से वासना, वासना से संसार। कर्तापन से मेरे अंदर वासना पैदा हुई है, वासना मुझको जो अनुभव होती है वो विभिन्न इच्छाओं के रूप में होती है, और इन इच्छाओं का फैलाव संसार में है और उनकी पूर्ति के साधन संसार में, ये तो संसार हो क्या संसार। तो इसीलिए इसी वासना के कारण मेरी देह भी बन जाती है और संसार भी बन जाता है। महाराज कहते हैं देह करके संसार है, देह और संसार में कोई भेद नहीं है, ये केवल देह और संसार कर्म और इच्छा पूर्ति के लिए साधन मात्र है। तो अब यदि मैं इसको बंधन करके देखूं, अज्ञान करके देखूं, तब इससे छुटकारा कैसे हो, प्रश्न उठता है इससे छुटकारा कैसे हो? और ये एहसास आपको तभी हो सकता है जब किसी पूर्ण गुरु के शरण में आप आए हो, उसके शास्त्रों का उसके ज्ञान का आपने श्रवण किया है, मनन किया है, और आप भी उसी निर्णय पर पहुंचे हो जिस निर्णय पर वो पहुंच चुका है, जो निर्णय वो शास्त्रों में लिखकर दे रहा है। तो उनका निर्णय तो एक ही है कि जीव की बेचैनी किसी भी सांसारिक तरीके से खत्म नहीं हो सकती, चाहे इस देह के हजार जन्म क्यों ना हो जाए। तो जो बुद्धिमान है वो फिर सोचता है मैं करूं तो क्या करूं, जब उसके अंदर ये प्रश्न उठता है कि मैंने इसको खत्म करना है, वासना को भी खत्म करना है, कर्तापन को भी खत्म करना है या अहंकार को भी खत्म करना है, और जिस दिन ये खत्म होते हैं उसी दिन उसका ईश्वर से भेंट का होता है या ईश्वर में स्थिति का होता है या ईश्वर को जानने का होता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, कर्तापन का खत्म होना और ईश्वर में स्थिति होना, ये दोनों एक साथ होती हैं। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए, समस्या ये है। तो महाराज जी की यदि समतावलास पढ़ो तो वहां बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, महाराज जी कह रहे हैं कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। क्यों असली त्याग है? क्योंकि यही आपका कर्तापन खत्म करेगी। इसके बिना कर्तापन और वासना आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी। कहते हैं कर्म फल द्वंद्व का त्याग ही असली त्याग है। और कर्म फल द्वंद्व हम जानते हैं, जो कुछ भी मैं कर्म करता हूं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसका फल द्वंद्व रूप होता है। मन चाहा फल मिल भी गया लेकिन क्योंकि वो द्वंद्व रूप है इसलिए उसमें परिवर्तन अवश्य होगा, वो वैसा रह ही नहीं सकता। द्वंद्व का मतलब होता है संस्कृत में संघर्ष। जैसे सुख है तो सुख के साथ दुख होगा ही होगा, तो सुख और दुख ये दो दो अपोजिट पोल्स हैं उसके, तो इनमें निरंतर द्वंद रहता है। अर्थात सुख से दुख का निर्माण होता है और दुख से सुख का निर्माण होता है। जैसे कि आपको भूख बड़ी हल्की सी लगी हो या ना लगी हो, भूख ना लगने की हालत में आप खाना खा लें तो आपको स्वाद कितना आएगा आप जरा समझ सकते हो। और भूख यदि तेज लगी हो, भूख लगना आती है तो मनुष्य के लिए दुख का कारण है ना, भूख तेज लगती है तो मन बेचैन होता है, नहीं होता है, खाना जल्दी से मिलना चाहिए। भूख यदि तेज लगी हो और वही खाना आपको उस हालत में मिल जाए तो आपको कितने गुना स्वाद ज्यादा आएगा उसके अंदर, आप जरा विचार करके देखिए। एक बचपन में कहावत सुना करते थे, भूख में किवाड़ भी पापड़ हो जाते हैं, ये कहावत चली आई है। अर्थात निरर्थक चीज भी जो खाने लायक नहीं है वो भी बड़ी अच्छी लगती है यदि तेज भूख लगी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भूख के दुख से ही खाने का सुख उत्पन्न हो रहा है। जिस मात्रा में भूख बढ़ रही है उसी मात्रा में खाने का सुख भी बढ़ रहा है। तो इसको द्वंद्व कहते हैं कि एक चीज से दूसरे का निर्माण होना, एक से ही दूसरा पैदा हो रहा है। यदि आपके अंदर किसी भी सुख प्राप्ति की इच्छा ना हो तो संसार की कोई भी वस्तु आपको दुखी नहीं कर सकती। और जितनी आपकी प्यास ज्यादा है संसार की वस्तुओं के प्रति उतने ही आपके अंदर दुख ज्यादा होगा। दुख का किस रूप में होगा, मानसिक क्लेश के रूप में होगा, मानसिक बेचैनी के रूप में होगा। तो इसीलिए वाणी कह रही है जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। तूने ये विचार करना है जो सुख स्थिर रह ही नहीं पा रहा है, आज जवानी का सुख है ये चला जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे का सुख भी छिन जाएगा, मौत आ जाएगी। आज स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य का सुख भोग रहा हूं मैं, कल को रोग आ जाएगा। तो हर सुख दुख में बदल रहा है और कभी भी बदल जाएगा। ऐसे ही दुख भी सुख में बदल जाता है, दुख के दिन भी सुख के दिन में बदल जाते आदमी। तो ये जो सुख और दुख का आवागमन है ये निरंतर प्रक्रिया है, और हम गलती से इस चीज के रहस्य को ना जानने के कारण इसमें से सुख को पसंद करते हैं और दुख को चाहते हैं ये भाग जाए या आए ना। तो इसीलिए समतावलास में लिखा हुआ है हर सुख दुख में बदल जाता है, प्रकृति का सिद्धांत यह है। तो यदि आपको इस सिद्धांत पर भरोसा है, जो कि होना चाहिए क्योंकि शास्त्र पढ़ रहे हो आप, गुरु की बात पढ़ रहे हो आप कैसे कह दोगे गुरु हमको बहका रहा है, ये नहीं कहोगे आप, तो गुरु की बात मानो। फिर हर सुख दुख में बदल जाता है। तो इसीलिए महाजी कहते हैं प्रेमी यदि तूने अध्यात्म मार्ग पर चलना है तो तूने मर्यादा में सुख भोगने की आदत डालनी पड़ेगी। और मर्यादा में सुख भोगने का मतलब क्या होता है, तेरी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, परिवार की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए तू कर्म करेगा, पैसा कमाएगा, साधन इकट्ठे करेगा और उनका उपयोग करेगा अपनी मूलभूत बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। शौक नहीं पालेगा तो देखा देखी जो अज्ञानी लोग हैं वो सुख इकट्ठे कर रहे हैं, उनको देख के तू भी लाइन में लग जाता है कि मैं भी ये सुख इकट्ठे करूंगा। ये तेरे मन में रीडिंग नहीं आ पाती, ये तू इस दृष्टि से नहीं देख पाता उनको कि ये किस मुसीबत में फंस चुके हैं, इनका मन किस मुसीबत में फंस चुका है, इनके अंदर कर्म करने की क्या बेचैनी बनी हुई है, साधन इकट्ठे करने की क्या बेचैनी बनी हुई है, वो तुझे को दिखाई नहीं पड़ता। आप घर में मान लिया आपके पास बड़ा पैसा है, आप 50 तरीके के साधन इकट्ठे कर लिए, तरह तरह के इक्विपमेंट्स इकट्ठे कर लिए, ऑटोमेटिक आपने इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, तो विचार करके देखो उनकी मेंटेनेंस के लिए आपको कितना चिंतित होना पड़ेगा। इकट्ठे तो किए आपने सुख प्राप्ति के लिए, कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट आउटडेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, नया चाहिए आपको, कहीं कोई डिफेक्टिव हो जाएगा, उसकी रिपेयर कराने को चाहिए, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जो आपने सुविधा के लिए इकट्ठा किया है उससे आपको असुविधा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सीधी सी बात, सुख से ही दुख उत्पन्न हो रहा है। सिंपल लाइफ हो आपकी, उसे क्या चाहिए फिर? वो तो चार रोटी की सोचता है, चार कपड़े की सोचता है, एक झोंपड़ी की सोचता है, वैसी जिंदगी जीने की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए महा जी कहते हैं, प्रेमी यदि तूने अध्यात्म मार्ग पर चलना है तो सादगी के रास्ते से तुझको चलना पड़ेगा। सादगी का मतलब यही है कि मेरी नजर यहां रहना चाहिए कि कितनी सिंपल लाइफ में मेरा काम चल सकता है। तो सिंपल लाइफ में ना बड़े फायदे होंगे ना बड़े नुकसान होंगे आपको, ना बहुत सोचना पड़ेगा ना बहुत बहुत बड़ी चीज कोई बिगड़ेगी तुम्हारी, एक नॉर्मल लाइफ आप व्यतीत कर सकते हो। और ऐसी लाइफ में आपके पास ईश्वर की याद करने के लिए वक्त भी होगा, शास्त्र का स्वाध्याय करने का भी वक्त होगा और मनन करने का भी वक्त होगा। तो इसलिए महाजन का प्रेमी समय सीमा बांधकर स्वार्थ कर्म भी कर और परमार्थ के रास्ते पर भी चल। तो इस प्रकार का प्रोग्राम बनाकर जब मैं चलता हूं तब वो इसके आगे की बात कहते हैं। ये मेरी जब बेसिक तैयारी हो गई, मैंने अपने आप को सिंपल कर लिया, संसार की नकल करके नहीं, उनकी हाय हाय करके नहीं, मेरे अंदर जो भय बना रहता है ना, अपने प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, परिवार के प्रति भी भय बना रहता है अनजाना सा, पता नहीं कुछ सब चीज़ बिगड़ तो नहीं जाएगी कहीं, पैसे कम हुए मान लिया बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी, ये तरह की कल्पना करते रहते हैं। फिर हम सिद्धांत भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति को प्रारब्ध लेकर संसार में भेजा गया है, सिद्धांत भूल जाते। जब प्रारब्ध लेकर भेजा गया है तो उसके जीवन में सुख और दुख उसके प्रारब्ध के अनुसार आएंगे। उसके काहु ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जो भी जीव आया है वो अपने पास्ट में किए हुए कर्मों का फल सुख रूप में दुख रूप में वो भोगेगा, और उसकी कुंजी ईश्वर के हाथ में है जो अंतर्यामी है। तो अब बताइए, शास्त्रों ने माता पिता को ये सामर्थ्य कहां दिए है कि वो बच्चों का जीवन सुखी कर सकते हैं और दुखी कर सकते हैं? उनकी देह भी तो प्रारब्ध के अधीन है, उस प्रारब्ध के अनुसार ही वो बच्चों की सेवा भी करेंगे, उनकी केयर भी करेंगे, खुद भी सुख दुख भोगेंगे और बच्चे भी सुख दुख भोगेंगे, तुम्हारे भी काम बनेंगे बिगड़ेंगे और बच्चों के भी काम बनेंगे बिगड़ेंगे। लेकिन ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब शास्त्र पर आपका विश्वास हो, गुरु पर पक्का निश्चय। तो इसीलिए वो कहते हैं मनुष्य अपना जो कर्तापन है, जो मोटा कर्तापन है, अभी उस स्रोत की बात जाने दें जहां से सृष्टि का प्रारंभ होता है, जहां से हमारा मनुष्य का प्रारंभ होता है, वो स्रोत की बात जाने दें। देखिए हमारे अंदर जो संसार में कर्तापन कर्मों का जो बैठे हुआ है कि मेरे करने से ही होगा, ये कर्तापन उसका वीक पड़ता है। जब वो इस संसार चक्र को प्रारब्ध के अधीन करके देखता है कि पूरा का पूरा संसार चक्र प्रारब्ध के अधीन है। मेरा शरीर और ये ब्रह्मांड, ये दोनों का प्रारब्ध एक साथ है, अलग अलग नहीं है, दो चीजें। तब वो हर चीज को ईश्वर हुक्म में चलता हुआ जानता है। यहां उसका कर्तापन वीक पड़ता है, इसका अंदर कर्म करना नहीं छोड़ता, वो छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि देह मिली है तो देह तो कर्म करने के लिए मिली है, और जो कर्म इसके होने हैं वो प्रारब्ध के अधीन है, उनका फल भी प्रारब्ध के अधीन है। तो संसार चक्र और तेरी देह का चक्र तो वैसा ही चलेगा जैसा ईश्वर ने निश्चित कर रखा है, लेकिन अभी तू अपने हुक्म में चलता हुआ देखता है, फिर तो इसको ईश्वर के हुक्म में चलता हुआ देखेगा। तो तेरे अंदर जो कर्तापन स्ट्रांग था, उसके कारण कितनी बेचैनी होती थी तेरे अंदर, अब वो बेचैनी तेरी कम होगी या नहीं होगी? खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम तो हो जाएगी। और यदि तूने शास्त्र का मर्म समझ लिया है, तब तेरे अंदर ये इच्छा होगी कि इस कर्तापन को मैंने खत्म करना है, क्योंकि बिना ईश्वर के भेंट के, जो कि आनंद रूप है, शांति रूप है, जहां कोई भी भय नहीं है, वो निर्भय है वो अवस्था, तो मुझे तो वो अवस्था चाहिए, ताकि कहीं कोई कमी महसूस ही ना हो मुझे कभी सारी जिंदगी में। तो वो अवस्था चाहिए, तो ईश्वर से भेंट होना चाहिए आपको तुम्हारी। तो अब आप जो जीवन जीते हो वो उस ईश्वर से मिलने के लिए जीते हो, क्योंकि आपने एक निश्चय तो आ गया, संसार में ना कुछ बनेगा ना बिगड़ेगा, जब ये प्रारब्ध के अधीन है तो कोई कौन किसको क्या सुख और दुख दे सकता है? हमारी जो आशा लोगों पे थी और संसार पे थी कि ये मुझे सुख देंगे, वो आशा वहां से हट जाती, लेकिन वासना तो खत्म नहीं होती आपकी, वो बड़ी गहरी चीज है। स्वभाव तो खत्म नहीं हो जाता, वो बड़ा गहरा है। संस्कार तो खत्म नहीं हो जाते, वो बड़े गहरे हैं। लेकिन एक निश्चय बदलता है कि ये संसार चक्र, मेरा जीवन चक्र ईश्वर के अधीन चलेगा। इसलिए चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सोचने की कोशिश करनी है, उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी है। और मेरा जो पर्पस है जिंदगी का, कि अंतर्यामी ईश्वर से भेंट करना, उसी का दूसरा नाम है कर्तापन को खत्म करना, वासना को खत्म करना, ये काम मैंने करना है जिंदगी में। तब वो जब समतावलास पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, तब वहां लिखा हुआ है कि कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है, सादगी रखना त्याग नहीं है। वहां आके पता लगेगा कि कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है, क्योंकि मनुष्य की आसक्ति कर्म के फल में है, और फल क्योंकि द्वंद रूप है, सुख रूप है और दुख रूप है, और इसमें भी आपस में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। तो इसीलिए जब तक उसकी निगाह इस कर्म फल से नहीं हटेगी, तब तक उसके मन की बेचैनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। यहीं आकर गीता का सूत्र समझ में आता है कि कर्मण्ये वादकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता भी प्रारंभ में दूसरे अध्याय में यही करी है, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। क्योंकि गीता क्यों लिखी गई है? ईश्वर प्राप्ति के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है उसका, कर्म बंधन से मुक्ति के लिए, कर्तापन से मुक्ति के लिए। तो प्रारंभ में लिख दिया उन्होंने, जब इस उद्देश्य के लिए गीता लिखी गई है, इसी उद्देश्य के लिए तुम पढ़ रहे हो उसको, तो शुरू में लिख दिया कि मां फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार हुए, फल में कदापि नहीं। कर्म में भी अधिकार क्यों है? क्योंकि कर्म तो देह से होते हैं ना, तुम चाहो या ना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कर्म इस देह से होने हैं प्रारब्ध के अनुसार वो होंगे, तो इसलिए वो अधिकार है, देह का अधिकार है, देह से कर्म होंगे। लेकिन फल में तेरी यदि आसक्ति नहीं है, उधर तो नहीं देख रहा है, तब बंधन नहीं रहेगा उस कर्म का। तुझे कर्म का बंधन तो तुझे तब रहता है जब फल में तेरी आसक्ति है कि मुझे ये फल चाहिए, जरूर चाहिए, तो कर्म का बंधन तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो जब आप इस विवेक दृष्टि से संसार में कर्म करते हो, और विवेक दृष्टि से जब आप ईश्वर का सिमरन करते हो, ईश्वर का चिंतन करते हो, तब आपको ये जो कर्म फल सता रहे थे, कर्म करने में बेचैनी सता रही थी, जो आपको सिमरन नहीं करने दे रही थी, अब आप सिमरन बड़े प्रेम से कर पाते हो। अंदर से मन में आ गया, नहीं, बुद्धि के निश्चय में आ गया, प्रभु तू करता तू हरता सर्व तेरी आ गया, संसार तेरा है, इस ये देह तूने दी है, तो अब चला भी तू ही रहा है, अपने नियम अनुसार चला रहा है तू इसको। मेरा है क्या? मेरी है तो केवल वासना है वो मेरी। इस वासना को जब मैं बंधन रूप करके देख रहा हूं, मैंने इससे मुक्ति पानी है, इसके लिए मैं आपकी याद कर रहा हूं, तो मैं वासना को क्यों याद करूंगा? मैं तो प्रभु को याद करूंगा। वासना को तो मैं दोष करके देखूंगा, बंधन करके देखूंगा, तो दिल से मैं निर्वास होने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कर्म का त्याग तो कर नहीं सकता क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। तो मैं क्या त्याग कर सकता हूं? कर्म फल द्वंद का त्याग कर सकता हूं, वहां से निगाह अपनी हटा लूंगा, ईश्वर हुक्म में जीना सीखूंगा। इसको कहते हैं ईश्वर परायण जीवन। वास्तव में यह है ईश्वर परायण। तो अब बताइए, जो व्यक्ति सादा तक नहीं रह सकता, वो कभी जिंदगी में कर्म फल द्वंद का त्याग कर सकेगा क्या वो? तो इसलिए महाजी ने जब अध्यात्म विद्या स्टार्ट की तो सादगी से स्टार्ट की। इसके बिना तो इस प्रोग्राम में चल ही नहीं सकते आप। लोग गलती करते रहते हैं, संसार के भोग विलास भी करते रहते हैं, सब फैशन भी बढ़ाते रहते हैं, कमाई भी बढ़ाते रहते हैं, एसेट्स भी बढ़ाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिमरन में हमारा मन भी लग गया। खुद ही सोच लो, लग सकता है कभी जिंदगी भर? कभी जिंदगी में सिमरन में मन लग सकता है ऐसे व्यक्ति का? नहीं लग सकता। उसको पता ही नहीं मैं किस उद्देश्य से सिमरन कर रहा हूं। जिसने अहंकार खत्म करना है, कर्तापन खत्म करना है, गोल तो उसने वो बना रखा है, समझ को ABCD की भी नहीं है अध्यात्म की, तो सिमरन में सफलता कैसे मिल जाएगी? बेटे को कुछ हो गया, वर्षों चिंता सताती रहेगी आप। घर को कुछ हो गया, वर्षों चिंता सताती रहेगी। अपने देह को कुछ हो गया, वर्षों चिंता सताती रहेगी। तो एक ना एक आइटम तो बिगड़ता ही रहेगा आपका। आज एक आइटम संभला हुआ है, नहीं कल को वो बिगड़ जाएगा। कल को जो बिगड़ा हुआ आइटम था वो समझ जाएगा। तो अभी इसकी आइटम की चिंता है, परसों को उसकी आइटम की चिंता हो जाएगी, आप चिंता वहीं रहेगी। आप खुद विश्लेषण करके देख लो, अपनी अपनी जिंदगी का पूरा विश्लेषण करके देख लो ईमानदारी से। आपको यही मिलेगा कि कोई साल जिंदगी का मेरा चैन से नहीं कटा, कोई साल मेरे जिंदगी का चैन से नहीं कटा। ये आपका एनालिसिस फाइनल निकलेगा हर व्यक्ति का। तो आगे क्या संभावना है? आगे तो बुरे दिन आने वाले हैं, बुढ़ापे के दिन आने वाले हैं, उसमें चैन कहां से मिल जाएगा? शरीर ही धोखा देगा तो चैन कहां मिल जाएगा? तो इस करके वाणी निर्णय कर रही है, और बिल्कुल निर्णय बिल्कुल ठीक है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। फिर सुखी कौन है? मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करता है। जिसने उस ईश्वर को जाना केवल वही सुखी हो सका। ये इंद्रियों का सुख नहीं है, ये वो सुख है जिसमें मन की बेचैनी का दर्शन होता ही नहीं है। मन में कोई बेचैनी की एक मन में बेचैनी का एक संकल्प भी उठता ही नहीं, क्योंकि चैन है, पूर्ण चैन है। और ये बात सत्पुरुष को देखकर समझ में आती है कि प्रेमी बैठे हुए हैं चारों तरफ। नहीं, नहीं। महाजी कहते हैं कि प्रेमी कोई विचार करो, और 5 मिनट यदि साइलेंस में निकल जाए, कोई प्रेमी विचार ना करे, तो महाराज जी गहरी समाधि में चले जाते थे। तो मन में यदि एक संकल्प भी उठ रहा है तो समाधि लग ही नहीं सकती। तो इसका मतलब सुख का जो स्रोत है वो खींच रहा है उनको, उनके मन को, जो सुख का जो स्रोत है, जहां से आनंद, जहां आनंद ही आनंद है, सुख का सागर जहां पर है, मन को खींच रहा है। वो नेचुरल स्थिति है उनकी, ऑटोमेटिकली वहां चले जाते। जैसे कहीं कोई बातचीत चल रही हो, आपका कोई प्रिय गाना जो बहुत प्रिय हो आपको, वो कहीं से उसकी धुन आ जाए, तो ऑटोमेटिकली बातचीत में से ध्यान हटके वहां पहुंच जाए। वो नेचुरल स्थिति होती है, वो बनाई नहीं जाती, वो कोशिश नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेटिकली जहां सबसे ज्यादा रस है वहां आपका अटेंशन पहुंच जाए। तो सतपुरुष की ये नेचुरल स्थिति है कि उनके प्रिय शिष्य बैठे हुए हैं। कोई प्रश्न नहीं पूछा किसी ने, समाधि में चले। और वहां से कितनी देर में लौटेंगे उसका भी कोई टाइम निश्चित नहीं होता था। कई बार 10 मिनट में वापस आ जाते थे, कई बार आधे घंटा भी लग जाता है, कई बार घंटा भी लग जाता था। ऐसा भी होता था कई बार प्रेमी कहते थे बड़ी रात हो गई चलो अब चलते हैं, प्रेमी चले जाते थे, महा जी समाधि से उठते ही नहीं। तो ये स्थिति है जीव के परमानेंट सुख की, जीव के परमानेंट कल्याण की, जीव के परमानेंट अहंकार से मुक्त होने की। उसके अंदर कोई बोध नहीं है कि मैं हूं, केवल वहां ईश्वर की एग्जिस्टेंस है, ईश्वर की सत्ता है जो आनंद रूप है, जो शांति रूप है, बाकी संसार वहां गायब है। लेकिन जहां संसार गायब है वो सत्ता मौजूद है, उस सत्ता में इतना आनंद है कि उसके सामने सारा संसार फीका है। इसलिए सत्पुरुष की संसार में लेश मात्र भी रुचि नहीं होती, लेश मात्र भी रुचि नहीं होती। और वास्तव में यदि बात कही जाए तो सत्पुरुष की वो स्थिति होती है जिसको आत्मलीन अवस्था कहते हैं या सहज समाधि कहते हैं, कि जिस सत्ता का अंदर अनुभव कर रहे हैं वही सत्ता वो सारे संसार में ओत प्रोत देखते हैं। ये सत्ता नजर नहीं आती जो हमको ठोस सत्ता नजर आ रही है, वो इसमें भी सारी उसको आत्म सत्ता को देखते हैं। तो इसीलिए जितने भी भक्त हुए यानी प्रभु के, सबने इस संसार में उस आत्म सत्ता का ही दर्शन किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे मुझको हर जगह मां नजर आती है, मीरा कहती थी मुझको हर जगह कृष्ण नजर आते हैं, जित देखूं उत और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। गौरंग महाप्रभु हैं समुद्र का नीलापन देखकर, क्योंकि आसमान जो का अक्ष पड़ता है समुद्र में तो नीला नजर आता है वो, तो नीले पानी में उनको भी कृष्ण नजर आ रहे हैं, वो समुद्र में छलांग लगा दे रहे हैं, होश ही नहीं है उनको, देह का होश ही नहीं है उनको, कि सारा जगत उनको कृष्ण रूप नजर आता है। तो सत्पुरुष की यह स्थिति होती है कि वास्तव में जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि नाम और रूप ये बंधन है, और इस नाम रूप के अंदर केवल ईश्वर की सत्ता है, इस देह के अंदर केवल ईश्वर की सत्ता है। इसलिए अंदर उस सत्ता की जब अनुभूति होती है तो ये फिर देह आपको ठोस नजर नहीं आते, फिर इस सत्ता के अंदर जब नौ में उसका अनुभव होता है तो फिर ये देह ठोस नहीं रह जाती, फिर इसका ठोसपना ही खत्म हो जाता है। तो ये सत्पुरुषों के अनुभव की बातें हैं, वो ऐसे ही कह रहे हैं, वो कहानी नहीं कह रहे आपको, वो कोई थ्योरी पेश नहीं कर रहे हैं, वो अनुभव की बात बता रहे हैं। उसके मुकाबले में ये संसार जब दिखाई पड़ता है, उनको दोनों चीज दिखाई पड़ रही ना, तो कहते हैं ये तो केवल छाया जैसा है, ये संसार छाया जैसा है। महाजी जो जंगल से लौट रहे थे, सरूपा जंगल से, भगत जी साथ में थे, तो भगत जी से कहते हैं बनारसी इस समय देह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कोई छाया संग चल रही हो। अब सत्पुरुष को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भगत जी से, झूठ तो नहीं बोला, ये उनकी नेचुरल स्थिति है। तो सत्य देह है या सत्य ईश्वर है? ईश्वर के मुकाबले में देह छाया जैसी लग रही है, मैं चलो मेरे संग छाया चले तो ये वास्तविकता मेरी देह की है या वो वास्तविकता मेरी देह की है? तो कोई वहम नहीं होता, हाँ ये वास्तव में शरीर है वो छाया है। तो सत्पुरुषों के जीवन से पता लगता है कि वास्तव में संसार में क्या चीज सत्य है और क्या असत्य है। तो संसार का जो नाम और रूप है ये असत्य है, और नाम रूप जिस पर आधारित है, जिसके आधार पर खड़ा हुआ है वो सत्य है। तो इसीलिए जब उसकी सत्ता नजर आती है और सारा संसार उस सत्ता के कारण ये चलता फिरता, या यूं कहिए नियम के अंतर्गत चलता हुआ नजर आता है, कि सूर्य अपना नियम तोड़ता है, चंद्रमा अपना नियम तोड़ता है, धरती अपना नियम तोड़ती है, कभी जिस स्थिति में मूव कर रही हो कर रही, तो सारी सारी प्रकृति उस प्रभु का हुक्म मान रही है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, ये भी उसके हुक्म में चले, ये प्रकृति का अंग है या प्रकृति से अलग मत समझना इसको, ये तो मेरा अहंकार बोल रहा है कि मैं अलग हूं, ये मेरा अहंकार बोल रहा है जो कि दोष है, इसको खत्म करने के लिए मैंने गुरु बनाया है। तो इसीलिए धीरे धीरे आपकी प्रगति इसी रूप में होती है कि आपका ये अहंकार कमजोर पड़ता जाता है, कमजोर, मैं करता हूं मेरे करने से हो जाएगा, ये धीरे धीरे वीक पड़ता रहेगा। जैसे जैसे आपकी भक्ति स्ट्रांग होगी ये वीक पड़ता रहेगा, वीक पड़ता रहेगा। तब आप देखोगे जब ये काफी वीक हो जाएगा फिर सिमरन में कितना प्रेम आता है आपके अंदर, सिमरन में कितना मन लगता है। कर्तापन जब वीक पड़ेगा, अहंकार वीक पड़ेगा, तो सारे कर्म ईश्वर हुक्म में देखने वाले बनोगे, नहीं बनोगे आप, उसके फल भी ईश्वर हुक्म में देखने वाले बनोगे, और वो फल आपको जहर समान भी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जहां फंसे फल के अंदर नई डिजायर्स पैदा होंगी, जो चीज प्राप्त कर ली उसको उसकी रक्षा करने की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इच्छाएं बदलेंगी, नई चीज लाने की भी आपको सोचनी पड़ेगी, फंस जाओगे माया में। तो बड़ी मुश्किल से इसमें से निकल के बाहर आए हो, थोड़ा ये वासना कमजोर पड़ी है, तो अब आप अलर्ट हो जाते हो। तो जैसे जैसे ये विज्ञान जो है, ईश्वर का विज्ञान, ये विवेक जो है ये स्ट्रांग होता है, वैसे वैसे आपके अंदर ये इनके प्रति राग कम होता जाता है, कम होता जाता है, अर्थात वैराग्य बढ़ता जाता है। तो उस विवेक और वैराग्य की स्थिति में आपसे सही सिमरन बन पड़ता है, अर्थात ईश्वर की प्रेम से याद आती है कि वो मेरा जीवन है, उनको ऐसे प्रेम से याद आती है जैसे कि वो उनका जीवन हो, उनके बिना जीवन उनका निरर्थक है। तो अब बताइए भक्त प्रहलाद की वो क्या हालत होगी, जरा विचार करके देखो। उसका पिता ही उसको मारने पे तुला हुआ है, लेकिन वो मरने को तैयार है, लेकिन ईश्वर का नाम छोड़ने को तैयार नहीं है, ईश्वर का प्रेम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये उसकी वास्तविक स्थिति है या काल्पनिक स्थिति है? ये वास्तविक स्थिति है ना? और ईश्वर है जिससे वो, उसने प्रेम किया है, जिससे दिल लगाया है, वो तो है, इसलिए ईश्वर ही बचाता है उसकी देह को, पिता को खत्म कर दिया जाता है। तो भक्तों के जीवन की ये वास्तविकता है या नहीं है, या कहानी किससे है? महाजी भी पहाड़ से कितने ऊंचे से गिरे थे, देह तो चकनाचूर हो जानी चाहिए थी, लेकिन देह पर एक खींच तक नहीं आई उनकी। और खुद उन्होंने अपना अनुभव बताया कि प्रेमी जब ऊपर से गिरे थे तो बस सीधे सीधे गहरी खाई में नीचे जा रहे थे, ऐसा लगा किसी कोमल हाथे, लंबे लंबे कोमल हाथों ने इनको थाम लिया। तो जो ईश्वर की याद में डूबा हुआ है उसके तो संग ईश्वर हर समय, और हमारे लिए ईश्वर गायब है, हम वासना में गोते खा रहे हैं, उसमें परेशान हो रहे हैं। तो जिसने ईश्वर का हाथ पकड़ा उसकी वासना तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसका कर्तापन तो खत्म हो रहा है, और जिसने संसार का हाथ थामा उसकी वासना बढ़ रही है, डिजायर्स बढ़ रही हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, मैनेजमेंट फैलता चला जा रहा है, जिंदगी कहाँ निकल गई पता ही नहीं आता, मौत सामने आ जाती। तो इसीलिए कर्तापन खत्म करने के दो ही रास्ते हैं, कि इस जीवन को उसके हुक्म में चलता हुआ जानो। चल तो उसके हुक्म में रहा है लेकिन मैं जान नहीं रहा हूं इस बात को, और मेरी जो वासना है वो कर्म फल द्वंद में है, मुझे कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, दुश्मन है तो नहीं चाहिए, भाग जाना चाहिए या मर जाना चाहिए, मित्र है तो पास बने रहना चाहिए, क्योंकि उससे मुझे सुख मिलता है, उससे मुझे दुख मिलता है। तो सुख और दुख के प्रति मैंने अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कम करना है। तो इसलिए मैंने कहा इसका प्रारंभ ऐसे नहीं हो सकता, इसका प्रारंभ बस सुखों को कम होने की आदत डालने से ही हो सकता है, उसी का नाम सादगी। फिर तो सत्य का पालन भी करेगा, सत्य अर्थात ईश्वर पर विश्वास भी करेगा, फिर तो दीन दुखों की सेवा भी करेगा, भाई तेरे पास माया है, तेरे पास शरीर की शक्ति है, तेरे पास तेरी बुद्धि में कुछ योग्यता है, तो जो मदद जिसकी हो सकती है करेगा। फल तुझे चाहिए नहीं, फल के रूप में तुझे क्या चाहिए, ईश्वर भक्ति चाहिए। जितने भी कर्म कर रहा है अब तू, सत्कर्म जो कर रहा है, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए, तेरे मन में एक ही कल्पना आई है, मैं क्यों कर रहा हूं? ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, तो इसके बदले में तो ये तो ईश्वर चाहिए, वो तो जरूर मिलेगा। ईश्वर की बात मानकर ही तो ये कर रहा है, तो ईश्वर नहीं मिलेगा तुझे? जरूर मिलेगा। तो ये पांचों नियम का पालन तू ईश्वर प्राप्ति के लिए करता है, तो ये पांचों नियम तेरी वासना को कमजोर करते हैं, तेरे कर्तापन को कमजोर करते हैं, तेरे अहंकार को तोड़ते हैं और ईश्वर से जोड़ते हैं। तो इसीलिए तेरे जीवन में वो मौका जरूर आएगा जब अंतर्यामी ईश्वर से तेरा प्रेम होगा, उसकी झलक अनुभव करने को मिलेगी, और इस जन्म में पूरा काम नहीं हुआ तो तेरे अंदर दृढ़ विश्वास होगा कि मेरी जीवन लीला इस देह के साथ समाप्त होने वाली नहीं है, मेरा मालिक ईश्वर है, मैंने इस देह की मौत के वक्त ईश्वर की गोद में ही रहना है, ईश्वर से अलग नहीं होना, ईश्वर की गोद में ही रहना है, और वही अंतर्यामी ईश्वर मुझको नया शरीर देगा, नए शरीर के साथ वो सारा वातावरण देगा जहां ईश्वर भक्ति करने में मेरी वो मदद करेगा। तो इसीलिए ये कई जन्म की प्रक्रिया है, लेकिन जिसके अंदर शास्त्र का विश्वास है, गुरु विश्वास है, वो जन्म नहीं देखा करता, वो वर्तमान देखकर वर्तमान जन्म को सफल करता है गुरु के अनुसार, और एक दिन उसके जीवन में आता है कि जब पूरी तरह से अहंकार और कर्तापन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ओम ब्रह्म सत्यम।